This is an ABP Life podcast.
कई मीनारे हैं, कई मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गिरजाघर हैं, और दुनिया में तमाम किले और महल हैं जहां पर इतिहास रचा गया है, लिखा गया है। मगर कुछ सपाट मैदान, खाली घर, वीराने बाग ऐसे भी हैं जिन पर काले इतिहास का भार थोपा गया है, जो आज भी उस एक लड़ाई, वो नरसंहार या फिर किसी सामूहिक हिंसा या अत्याचार के लिए जाना जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 6.5 एकड़ के उस बाग में जो अमृतसर के गोल्डन टेंपल के करीब था, जलियांवाला बाग। एक खाक से भरे मैदान में कैसे मासूमों का खून बहाया गया था, इससे भारत में बच्चा बच्चा वाकिफ है। और हो भी क्यों ना, भारतीय इतिहास में इस दिन को भला कौन भूल सकता है, और भूले भी क्यों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। आज दिन है 13 अप्रैल का, और आज खुशनुमा बैसाखी, नवरात्रि, गुड़ी पड़वा के साथ साथ एक और दिन भी है जो इन सभी त्योहारों की चमक को थोड़ा हल्का कर देता है। आज है वो दिन जब जलियांवाला बाग में एक सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर ब्रिटिश राज ने बड़ी ही बेरहमी से अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। बाहर जाने का दरवाजा तक बंद कर दिया गया था, सोचिए। और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए अपने बच्चों के साथ। ब्रिटिश राज का कहना था कि 300 से 400 लोग मारे गए हैं, मगर कांग्रेस आज भी कहती है कि कम से कम 1000 आदमी उस दिन शहीद हुआ था। आज अगर हमें जलियांवाला बाग के बारे में पता है, भारत में ब्रिटिश राज के फांसीवादी तौर तरीकों के बारे में पता है, तो वो इसीलिए क्योंकि बचपन में दादी नानी की कहानियों से लेकर के स्कूल के इतिहास और सोशियोलॉजी की किताबें इस घटना के दर्द से भरी हुई हैं। और ये एक अकेली घटना नहीं है जो हमें याद है। हॉलोकॉस्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। हॉलोकॉस्ट यानी कि जर्मनी में किस तरीके से जूज यानी कि यहूदियों को मारा गया था, उसे भी लोग आज तक याद करते हैं। आर्मेनिया में जो नरसंहार हुआ था, जो टर्की के ऑटोमन गवर्नमेंट ने ईसाई आर्मेनियंस को बेरहमी से मारा था, 100 साल बाद पहली बार कुछ समय पहले ही पोप फ्रांसिस ने उस घटना को नरसंहार का तमगा पहनाया है। हालांकि टर्की को ये बात रास नहीं आई, मगर देश के बंटवारे से लेकर के कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस, गोधरा और मुजफ्फरनगर के दंगे आज भी हमें याद है, और इसी याद को संजोकर रखने की भी जरूरत है। मगर आप पूछेंगे कि क्यों, क्यों ऐसे भयानक यादों को संजोकर रखना है। कई लोग ये भी कहेंगे कि भूल जाना बेहतर है, दिमाग हल्का रहेगा। हो सकता है ये सही भी हो, मगर किसी भी धर्म या कल्चर में या देशों में याद रखने की प्रथा आखिर क्यों है? क्यों हम श्राद्ध मनाते हैं लोगों का? क्यों बरसी होती है? क्यों 13वीं होती है? हम श्राद्ध करते हैं, बरसी मनाते हैं, अपने पूर्वजों को खाना और भेंट चढ़ाते हैं, अपने परिवार को निरापद रखने के लिए उनसे दुआ करने की कामना करते हैं। ये सब याद करने वाले रिवाज ही तो हैं। कितना जरूरी है इतिहास में हुई हर नाइंसाफी को याद रखना? मेरे हिसाब से बहुत। जर्मनी में हिटलर ने एक स्पीच में बड़े ही गुरूर के साथ कहा था कि नरसंहार और हत्याकांड को कोई याद नहीं रखता। उसने ये कहा कि किसे याद है आर्मेनिया में क्या हुआ था, और शायद इसी गुरूर के चलते उसे अपने पापों का कोई भी पछतावा नहीं था। He enjoyed a very strong impunity against his activities, क्योंकि उसे लग रहा था कि दुनिया में वो हमेशा ही ताकतवर नेता के रूप में जाना जाएगा, कि किसी को याद नहीं होगा कि उसने क्या किया। मगर एट द एंड ऑफ द डे आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि हिटलर का पतन कैसे हुआ और आज उसे कैसे याद रखा जाता है। याद रखना इसलिए भी जरूरी है कि ताकतवर राजनेता और लीडर्स इस इतिहास को दोबारा ना दोहरा पाए। याद रखना इसीलिए भी जरूरी है ताकि किसी भी समुदाय को ऐसा ना लगे कि उनकी शहादत और खून खाली गया। मगर याद रखने में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा और परिवारों का पतन हुआ है इसी बदले की भावना से, और इसका कोई अंत नहीं होता। लोग कहते हैं कि प्यार करना मुश्किल होता है, मगर मेरे हिसाब से नफरत करना उससे भी ज्यादा कठिन। आपका कितना वक्त, उस इंसान का बुरा सोचने में लग जाता है। जितने समय में आप कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा कर सकते थे, उतने समय में आपने खुद को ड्रेन आउट कर दिया, खाली कर दिया किसी के बारे में बुरा सोचते हुए। हेटिंग इज अ वेरी कंटिन्यूस एक्सरसाइज, इट्स नॉट जस्ट टॉक्सिक बट ऑल्सो वेरी कंज्यूमिंग। और फिर ऐसा तो नहीं है कि जलियांवाला बाग के बाद से भारत और ब्रिटेन के रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गए हों, या फिर खत्म हो गए हों, या फिर जूस जर्मनी में कदम नहीं रखते हों। रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, देशों में भी और इंसानों में भी। मगर आपको अपना कल्चर, अपना रिवाज, अपने लोग और अपने पूर्वज किस तरीके से याद रखने हैं वो आप पर निर्भर करता है। मुहर्रम में जब लोग हसन और हुसैन की शहादत याद करते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि यजीदियों से नफरत की जाए, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हमें आपकी कुर्बानी याद रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि अगली बार कोई भी फैशिस्ट या कोई भी नेता या लीडर किसी भी समुदाय के साथ ये ना करे जो तब हुआ। दुनिया में सैकड़ों नरसंहार और सामूहिक हत्याएं हुई हैं, कंबोडिया से लेकर के रुवांडा तक, यूगोस्लाविया से लेकर के साउथ अफ्रीका तक। और आज सैकड़ों साल बाद भी या तो एक देश दूसरे देश की माफी एक्सेप्ट कर रहा है या फिर माफी मांग रहा है। बहुत जरूरी है सालों बाद भी देशों को आपस में रिकंसाइल करना, कन्फ्रंट करना, सालों पहले हुए अत्याचारों की माफी मांगना। नवंबर के समय ब्रिटेन में जब इलेक्शन होने को थे तब जेरेमी कॉर्बिन की लेबर पार्टी ने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि अगर वो जीते तो ब्रिटिश सरकार को भारत से जलियांवाला बाग में हुई नाइंसाफी, वहां हुए मैसेकर की माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात शायद कई लोगों के गले से ना उतरे, कई लोग ये भी कहेंगे कि इससे क्या फायदा, अब क्यों। मगर जो लोग उस घटना से सीधा ताल्लुक रखते हैं उनसे पूछा जाए तो वो बताएंगे कि ये कितना जरूरी है, ये क्लोजर, ये माफी। शायद उनके करीबी अब वापस नहीं आ पाएंगे, मगर माफी से साइकोलॉजिकली दिल और दिमाग को भी तो सुकून मिलता है। जर्मनी में आज भी किताबों में सबसे शुरुआत में लिखा होता है कि वी मस्ट नॉट फॉरगेट, यानी कि हम नहीं भूलेंगे। ये पंक्ति वहां के हर बच्चे बूढ़े को याद दिलाती है कि उन्होंने इंसानियत पर जो जुल्म ढाया था वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। और आने वाली पीढ़ियों को ये नसीहत दी जाती है इस लाइन से कि वो भी आगे ऐसा ना करें। जलियांवाला बाग में जो हुआ उसे भी एक नसीहत के तौर पर लेना चाहिए, वो भी कभी मिटाया नहीं जा सकता। मगर एक देश को, एक समुदाय को अपने हेरिटेज और अपनी जड़ों, अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए जितनी ज़रूरत अच्छी चीज़ें याद रखने की है उतनी ही ज़रूरत है बुरी चीज़ें याद रखने की भी, वो चीज़ें याद रखने की भी जिन्होंने बड़े से बड़े डेमोग्राफिक्स हिला कर रख दिए। उन्हें याद रखा जाए मगर बदले की भावना से नहीं। कुरान में दोस्तों लिखा है कि अगर एक मजलूम मरता है तो पूरी दुनिया की इंसानियत भी उसके साथ मारी जाती है, और यही चीज़ हमें जलियांवाला बाग भी सिखाता है। इसीलिए हर चीज़ याद रखें, ये हमारी मजबूती तो है ही, हमारी नींव भी है। मैं हूँ साहिबा खान, पॉडकास्ट की साउंड डिजाइनिंग की है ललित ने, और आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और आज है जलियांवाला मैसेकर डे। नमस्कार।
हर पल बदलती दुनिया में कोई अपडेट मत करो मिस, डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।